राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम
हरे हरे। सब लोग पुकारो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस पवित्र पुत्रदा एकादशी के दिन हम सब लोग 29 दिसंबर को गालताजी स्थान पर आए हैं। तो गालताजी नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहां पर गालव ऋषि ने तपस्या किया था, तो उनके नाम से ये फिर गालता ऐसे हो गया है। तो वो जो ऊपर आपको मंदिर दिखाई पड़ रहा है एकदम ऊपर सफेद से रंग का ऐश कलर का, वो गालव ऋषि का मंदिर है और वही उनका स्थान है जहां पर उन्होंने बैठकर तपस्या किया था, इसलिए उनको गालताजी कहा गया है। और वहाँ पर उनकी तपस्थली तो है ही, लेकिन उन्होंने एक बार यहीं पर रहकर गंगा जी में स्नान करने की इच्छा की, लेकिन उनको यहाँ से निकलने का मन नहीं था, तो उनके तपोबल से गंगा जी यहाँ प्रकट हो गई। आज भी पहाड़ के पत्थर से पानी निकल रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है कहाँ से आ रहा है, वो निरंतर धारा चल रही है। और तीन कुंड है, दो कुंड थोड़े इतने स्वच्छ नहीं है, लेकिन बीच का कुंड जो है छोटा सा है लेकिन बहुत स्वच्छ पानी है उसके अंदर। तो आप लोगों को बिना भूले इस कथा के बाद में ऊपर जाना है, गालव ऋषि को दंडवत करना है और बीच वाला जो कुंड है वहाँ पर आचमन करना है। छोटी जगह है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको वहाँ पर आचमन करने का मतलब होता है कि सात प्रकार के स्नान बताए गए हैं। उसमें एक होता है अग्नि स्नान, बाप रे अग्निस्नान क्या होता है? तो अग्निस्नान या नहीं, जो रक्षा होती है ना राख, उसको शरीर में जब मलते हैं यज्ञ की राख हो तो उसको अग्निस्नान कहते हैं। वायु स्नान एक हम लोग करते हैं, जल स्नान एक होता है, आचमन स्नान। तो आचमन में क्या करते हैं हम लोग, तीन बार अंजुलि में पानी लेते हैं, एक बार दो बार तीन बार, और पीते हैं तीनों बार, और तीन बार सर पे छिड़कते हैं, इसको आचमन कहते हैं। और आचमन पूरा आपको शास्त्रोक्त करना है तो पहली बार लेंगे केशवाय नमः, दूसरी बार लेंगे नारायणाय नमः, तीसरी बार लेंगे माधवाय नमः, और चौथी बार छोड़ देना है गोविंदाय नमः। ये करके आप बाद में पानी जब सर पे छिड़केंगे तो उसको आचमन, पूर्ण आचमन कहते हैं। और पूर्ण आचमन श्रद्धा से और भाव से जो करेगा प्रार्थना के साथ, उसको पूरे स्नान का लाभ मिलता है। और एक है आप पूरे डुबकी लगाएंगे उसके अंदर, तीन बार डुबकी लगाएंगे वैसे भगवान का नाम लेके, तो वो भी स्नान है। और सबसे ऊंचा स्नान कौन सा है? सर्वोच्च स्नान, हाँ, भगवान नाम, भगवान नाम जो पुकारते हैं ना, वो सर्वोच्च स्नान माना गया है। एक और स्नान है जिसको सत्संग कहते हैं। सत्संग में जो सत्संग करने वाले साधु के मुंह से जो वचन निकलते हैं उसको सुनना भी स्नान की तरह माना गया है, श्रवण स्नान। और मैंने आपको शायद इसमें इस यात्रा में नहीं बताया, लेकिन बताऊंगा जरूर कि हमारे क्या क्या तत्व थे। पांच तत्व थे ना, हमको पढ़ने थे, इसमें समझने थे। क्या क्या थे वो? सत्संग, नाम जप, भागवत श्रवण, अर्च विग्रहों की पूजा और धामवास, है ना। ये सभी पांचों चीजें महत्वपूर्ण है, वो सत्संग के ऊपर आधारित है। अगर सत्संग नहीं होता या कोई भक्त आपको नहीं मिलता और संग अपना नहीं देता तो आप इसमें से कुछ भी चीज आज नहीं करते होते। लेकिन आप अपने आप को याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कोई ना कोई भक्त आपको मिले, उन्होंने आपको संग दिया, और उसके संग में फिर आपने जप शुरू किया, उनके संग में फिर आपने मांसाहार छोड़ दिया, उनके संग में फिर भागवत आप क्या समझ गए और भागवत पढ़ने लगे, सुनने लगे, उनके संग में फिर आप यात्रा में चले गए, उनके संग में फिर आप मंदिर जाने लगे, भगवान को देखने लगे, और जो भी कुछ भगवान की सेवा आरती पूजा करने लगे, घर में मंदिर बनाया आपने। ये सब भक्तों के बिना नहीं होता है। तो सत्संग जो है वो मनुष्य जीवन का एक सर्वोच्च लाभ है। और आपको लगता है कि मैं भी अच्छा भक्त बन गया, अब मुझे कोई सत्संग की जरूरत नहीं, ऐसा लगेगा आपको 20 साल के बाद में, तो भी आप एकदम पतित हो जाएंगे कुछ देर के बाद, सब कुछ छोड़ देंगे, जब करना भी छोड़ देंगे, मंदिर आना भी बंद कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। तो सत्संग ऐसी वस्तु है जो आपको केवल शुरू शुरू में जरूरत ऐसे नहीं है कि माँ का हाथ आपको जब चलने को नहीं आता था तभी पकड़ना जरूरी था, तो चलने के आने के बाद में माँ का हाथ छोड़ के आप भाग सकते हो, ये तो चलने के लिए ओके है, लेकिन सत्संग के लिए ओके नहीं है। सत्संग के लिए निरंतर जीवन के अंतिम क्षण में भी आपको भगवान को याद करनी है तो आजू बाजू में भक्त होने चाहिए आपके, नहीं तो आपको वही याद आएगा जहां पर आपने दिल लगा हुआ है, वहां से दिल हटाना है तो आपको भक्त बाजू में लगेंगे, प्रभु जी हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा, तभी आपको याद आएगा अरे हाँ मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी मर रहा हूँ, यमदूत सामने खड़े मेरे और मैं क्या सोच रहा हूँ। तो भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी हरे कृष्णा बोलो, माता जी हरे कृष्णा बोलो, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं भक्ति विधान में। तो उम्मीद है हमें कि उनका मन कहीं डर के मारे या और किसी भी चीज के मारे, आसक्ति के मारे यहां वहां भटक रहा हो, तो वो कम से कम पुकारने से, तो जब आप कुछ गुमसुम बैठे यहां पर बोलेंगे विनोद जी हरे कृष्णा बोलो, हाँ हाँ हरे कृष्णा, तो आप वापस आएंगे ना जहां पर भी आपका मन खोया हुआ है। उसी तरह से मृत्यु के समय में बहुत भयंकर तरीके से मन खोया रहता है, क्योंकि अभी लास्ट है ना, तो लास्ट मोमेंट में फिर क्या मन में विचार आएगा, कहां अपना मन टिका हुआ है क्या मालूम। तात्पर्य यह है कि सत्संग जो है वो सत्संग के ऊपर सब आधारित है। 64 तत्व जो है ना वो भी 64 भी इसके ऊपर आधारित है। अगर पहला वाला नहीं होगा बाकी सब नहीं के बराबर है, हो ही नहीं सकते। और भगवान ने 11वें स्कंद में सुंदर वर्णन अपने पिताजी को बताया है, क्योंकि कुरुक्षेत्र का जब ही हुआ ना स्नान उनका, चंद्र ग्रहण वाला, सूर्य ग्रहण वाला, उसके बाद में वसुदेव जी ने फिर सोचा कि मैं यज्ञ करूंगा एक अच्छा। उनको वसुदेव जी को नव योगेंद्र ने सभी लोगों ने आकर उपदेश किया, तो वसुदेव जी बहुत प्रेरित हो गए। पिताजी बोले आज तक तो मैं माया में था, ऐसे वसुदेव जी बोल रहे हैं। इमेजिन वसुदेव जी बोल रहे आज तक तो माया में था, अभी मुझे ज्ञान हो गया, अभी मुझे आसक्ति छोड़ देनी चाहिए, मैं अभी यज्ञ करूंगा। तो यज्ञ में सारे ऋषिगणों को बुलाया, और जब ऋषिगण आ रहे हैं उनके यज्ञ में, वसुदेव जी के यज्ञ में, कृष्ण भी साथ में है, तो कृष्ण भगवान उसमें पिताजी को बता रहे हैं, पिताजी इन लोगों को देखिए, ये जो आ रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा जीवन की प्राप्ति है इनका संघ। और फिर बताते हैं कि अगर आप मूर्ति पूजा भी करेंगे, भगवान की मूर्ति की पूजा करेंगे, तो धीरे 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 आपकी आत्मशुद्धि होगी। अगर आप धाम में भी जाएंगे, नदी में स्नान करेंगे और कुछ दान पुण्य करेंगे, हाँ थोड़ा बहुत तपस्या करेंगे, सब कुछ जो भी करेंगे, उससे भी धीरे धीरे शुद्धि होगी। लेकिन जो सत्संग में बैठेगा उसका सारा कलमश एक क्षण के अर्ध क्षण में नष्ट हो सकता है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। अभी किसकी मूर्ति की बात कर रहे हैं भगवान? खुद के ही मूर्ति की बात कर रहे हैं ना। अर्चन विग्रह कौन? भगवान तो स्वयं, भगवान स्वयं भी बात कर रहे हैं कि मेरी भी मूर्ति जिसपे प्रतिष्ठापना, प्राण प्रतिष्ठापना की गई है, उसकी भी आप निकट से 24 घंटा सेवा करेंगे, फिर भी शनई शनई धीरे धीरे आपकी शुद्धि होगी, ऐसे भगवान स्वयं बोल रहे हैं। मतलब एक तरह से भगवान 64 तत्वों को सत्संग के सामने फेल कर रहे हैं, समझ में आपको आया? एक सत्संग के सामने भगवान सारे तत्वों को बता रहे हैं कि कोई मतलब ही नहीं उसके अंदर, और सत्संग है तो इन सारे तत्वों को मतलब है। सत्संग है और आप भगवान की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, एक जीरो को 10 की वैल्यू आ गई। सत्संग में मिलकर भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, 2 0 100 हो गए वो। फिर सत्संग में तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, 1000। इस तरह से ये जीरो तो नहीं है, मैं आपको खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ये मत समझना कि मैं कह रहा हूँ कि सब जीरो है, हा? जीरो नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि जब उसके सामने एक अंक आता है तो कितने गुना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और एक निकाल दोगे तो सब अपने अपने जगह पर, कोई वैल्यू नहीं है उसकी ज्यादा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि समझो, अभी आप लोग आए हैं, अभी आपको कहाँ बैठे हो? गालता जी बैठे हो। अगर आपको भी इच्छा है कि मुझे अभी जमुना जी के किनारे बैठना है, तभी आप बैठ सकते हो क्या? अभी आप एक समय पे एक ही जगह बैठ सकते हो। ऊपर जाएंगे और गंगा जी में स्नान करेंगे, समझो आचमन स्नान करेंगे, तो एक समय पर कितनी नदियों में स्नान कर सकते हैं आप? कभी कभी 3 4 5 मिल जाते हैं, त्रिवेणी संगम, रामकुंड, नासिक वगैरह, वहां पर 7 भी है 5 भी है 3 भी है, मैक्सिमम 3 4 5। लेकिन पूरे विश्व की नदी में स्नान कर सकते हैं एक समय पे? नहीं कर सकते। आपको नारद मुनि का संग चाहिए, ऑफर मिलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, हाँ बोलेंगे, टाइम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अगर नारद मुनि का संग मिलने की संभावना आपको है तो आप तुरंत टूट पड़ेंगे उस पर, उम्मीद है मेरी कि आप टूट पड़ेंगे, सोएंगे नहीं और भागेंगे, ऐसे मेरी उम्मीद है। अगर आपको ऐसे कहा जाए कि आपको सारे संतों का एक ही समय संग मिलेगा तो कैसे रहेगा? तो भगवान ने स्वयं 11वें स्कंद में बताया है कि भगवान की कथा में जब कोई बैठता है तो उस कंथा में अदृश्य रूप से सारे संत लोग प्रकट हो जाते हैं, सारी नदियां प्रकट हो जाती हैं, सारे तीर्थ स्थल प्रकट हो जाते हैं, सारे पवित्र पहाड़ प्रकट होते हैं, सारे सरोवर कुंड प्रकट हो जाते हैं, और साक्षात भगवान प्रकट होते हैं क्योंकि उनकी कथा चल रही है। तो एक साथ में होलसेल लाभ मिलता है केवल सत्संग में बैठने से। इसमें खाली एक ही कंडीशन है, सत्संग में सोना नहीं चाहिए, सोएगा तो डिस्कनेक्ट हो गया वो। जैसे आपका मोबाइल स्विच ऑफ है तो क्या है वो? तो 100 ग्राम का एक पीस है वो, 100 ग्राम का एक ऐसा वस्तु है। ऑन करेंगे तो फिर उसमें मोबाइल में, इसमें फिर ईमेल है, उसके अंदर फेसबुक है, उसके अंदर व्हाट्सएप है, उसके अंदर SMS है, कॉल की फैसिलिटी, रिसीविंग फैसिलिटी है, फोटोग्राफ है, क्या सब कुछ एक्टिव हो जाता है। ऑन करना जरूरी है सर, वो स्विच ऑफ रखेंगे तो क्या कर सकते हैं उसको, इज यूजलेस मैटर। तो सत्संग में अगर आपको सब कुछ एक ही साथ में, मोबाइल में कितने फंक्शन होते हैं? कम से कम 25 फंक्शन होते हैं, वो सारे फंक्शन आपको एक साथ लाभ दे सकते हैं अगर वो ऑन रहेगा तो। वैसे आप अगर ऑन रहेंगे तो ये सारे 64 तत्वों का लाभ आपको एक ही जगह मिलेगा जहां पर आप बैठे हैं। ये महिमा मैंने कह रहा हूं, साक्षात भगवान बता रहे हैं अपने पिताजी को, ग्यारहवें आप पढ़ सकते हैं, ग्यारहवा स्कंद 51वां चैप्टर, नहीं 86 चैप्टर, आपको एक बार भेजा था मैंने उसको, दो जगह पर भगवान ने वर्णन दिया है। मैं आपको वो अपने SMS है ना ग्रुप अपने, उसको मैं नंबर भेज दूंगा आज, मेरे मोबाइल में रखा हुआ है सब। क्यों रखा हुआ है? मैं बार बार उसको पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ अपनी श्रद्धा को और दृढ़ करने के लिए कि सत्संग में कितनी शक्ति है। एक बार प्रभुपाद जी हमारे उधर शेष चाय में गए थे वृंदावन में, है ना, किधर उधर कोशी के आगे, कोशी वो नंद महाराज का कोष था वहां पर, तिजोरी कोशी, और द्वारका से अलग नहीं है वो, द्वारका और द्वारका प्रकट हुई है वहां पर। तो कोशी में एक शेष चाय है जहां पर कृष्ण भगवान और बलराम जी ने एक बार एक अद्भुत रूप दिखाया था कि बलराम जी शेष चाय नाग बन गए थे और कृष्ण विष्णु बन गए थे और लेट गए नाग पर जाके, सबको थपने दिखाया ग्वाल बालों को। तो उस जगह का नाम ही शेष चाय है। तो वहां पर उनके गुरुदेव यात्रा लेकर गए थे, प्रभुपाद के गुरुदेव यात्रा लेकर गए थे। तो उसमें भक्ति सिद्धांत जी महाराज कथा करने बैठे। आप सोच सकते हैं कलयुग का कितना प्रभाव है। देखो गुरु महाराज कथा कर रहे हैं शेष शाही में बैठकर, फिर भी सारे शिष्य उठे और दर्शन करने के लिए चले गए, कहाँ कहाँ इधर उधर घूमने के लिए, कहीं गोमती कुंड दिखने गए, रत्नाकुर कुंड दिखने गए, सब चले गए, और एक ही हमारे प्रभुपाद जी बैठे उधर अकेले। सोचो मैं बैठा हूँ, आप बैठे हूँ और कोई नहीं, और भक्ति सिद्धांत जी ने पूरा प्रवचन किया और एकाग्रता से प्रभुपाद ने वहां सुना उसको। उनको भी मौका था ना जाके रत्नाकर कुंड, गोमती कुंड, बहुत तीर्थ स्थान, बड़े पवित्र स्थान है। लेकिन उन्होंने क्या जाना, उन्होंने जाना कि गुरु के मुख से जो वाणी निकलती है ये इन सब स्थानों से भी बढ़कर पावरफुल है। जितने भी स्थान है, जितने भी नदियां हैं, कुंड है, तीर्थ है, उनसे भी पावरफुल गुरु के मुख की वाणी है। और उस वाणी में स्नान करना यानी पूरे विश्व के सारे कुंडों में एक ही साथ स्नान करना, चाहे गोमती रत्नाकर कुंड भी बाजू में है लेकिन उसमें भी स्नान आपका हो गया उसके अंदर। तो भक्ति सिद्धांत जी ने उसके बाद में बताया अपने अन्य शिष्यों को कि आगे जाकर ये व्यक्ति भक्ति सिद्धांत, भक्ति वेदांत स्वामी, मतलब तभी तो वो अभयचरण थे, गृहस्थ थे, आगे जाकर ये व्यक्ति जो भी कुछ लिखेगा ना उसको प्रिंट करना, क्योंकि ये श्रवण कैसे करना है इसको अच्छी तरह जानते हैं। जिनको श्रवण कला साध्य हो गई है वही कीर्तन कर सकते हैं, वही कथा कर सकते हैं। जिन्होंने ठीक से सुन लिया है, ग्रहण कर लिया है उसको कान के माध्यम से, वही व्यक्ति आगे जाकर दूसरों को वो बता सकता है। अगर आपको बोलेंगे प्रभु जी मैंने उधर पहले दिन में वो क्या कथा की थी 25 दिसंबर को शाम को, तो आप उससे सर बुझाना चालू कर देंगे। लेकिन अगर आपने उसने आपको आपने उसको अगर ध्यान से सुनकर नोट्स बनाए होंगे आप झट से बोल सकते हो क्या आपने बोला था, क्या सुना था। तो सारा कुछ रहस्य जो है वो संतों के संग में बैठकर श्रवण करने में है। जो भी संतों के संग में बैठकर आपने श्रवण किया है वही आपको जीवन में आगे काम आएगा और वही आप दूसरों को बोल सकते हो, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब तो ऐसे ही बेकार की बातें हैं सब। तो ये सब बातें कहाँ से निकली बताइए?
सत्संग,
वो पहला प्रिंसिपल, हाँ पांच में से सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल। तो ये सत्संग का परिणाम उतना होता है जितना बोलने वाला, जितना शुद्ध आत्मशुद्धि जिसकी हो गई है, जितनी शुद्धि होगी उतना उसका परिणाम हृदय पर ज्यादा होगा। सारे हमारे आवरण और बुद्धि मन तब के आवरण क्रॉस करके वो आत्मा को जाके छुएगा उसकी बातें जो बोल रहे हो। लेकिन फिर भी अगर बोलने वाला समझो शुद्ध भी नहीं है लेकिन वो जो बोल रहा है वो सही है, सत्य है, तो भी उसका परिणाम होता है। क्योंकि समझो बोलने वाला इतना पवित्र नहीं है, हाँ हो दुनियादारी भी है और भक्ति भी है, लेकिन जो बता रहा है वो शुद्ध शास्त्र से बता रहा है, जो भगवान की वाणी को दोहरा रहा है, तो उसके अंदर वही शक्ति है। वो अपनी मनगढ़ंत बातें उसमें घुसा के अपना एक कोई फिलॉसफी नहीं बता रहे। तो इसलिए वक्ता को हमेशा प्रामाणिक बात करनी चाहिए, प्रमाण से। तो ये संत की तपस्थली है। यहां पर क्यों आते हैं हम लोग गृहस्थ लोग हैं, हम तो तपस्या करने वाले नहीं है, लेकिन संत जब तपस्या करते हैं तो वहां पर बहुत पवित्र वातावरण निर्माण होता है, आध्यात्मिक वातावरण निर्माण होता है, उसमें बहुत दिव्य शक्ति होती है, उसमें जाकर हम अपने आप को चार्ज करते हैं। जैसे सुबह बहुत ठंड थी ना, तो आप लोग कोई जगह है क्या गर्म हुआ देख रहे थे कि तरह से कोई शेडो है क्या जहाँ पर ठंड ना लगे। और जैसे ही हम अपनी गाड़ी में बैठ गए तो ड्राइवर को बोला हीटर ऑन करो तुरंत, समझे आप। तो वातावरण जो है ना वो आपको प्रभावित करता है, ठंड वाला, गर्मी वाला, बारिश वाला, धूप वाला प्रभावित करता है, और वातावरण के अनुसार आपका मन बनता है। धूप ज्यादा होगी तो आप थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, कभी खत्म होगा, कभी जाना है, सोना है, थक गए, ऐसे बोलेंगे। लेकिन प्रसन्न वातावरण रहेगा, हवा आती रहेगी, तो आप बोलेंगे चलो बोलते जाओ, अच्छा मूड है, कोई थकान नहीं हो रही है। तो वैसे वातावरण, ये तो भौतिक वातावरण का वर्णन कर रहा हूं मैं, लेकिन वो जो वातावरण का मैं वर्णन कर रहा हूं वो दिव्य वातावरण है, स्पिरिचुअली चार्ज्ड। उसमें जाने से तुरंत हमारा आध्यात्मिक भाव बढ़ता है। अभी आप वहां पर भी जाएंगे ना तो शायद आपका वहां पर भी चार्ज नहीं होगा, समझो। क्योंकि मैं अभी उनसे बात कर रहा था, जब मैं मेरे साथ में प्रभु जी को लेके गया था, कई सारे विदेशी लोग वहां पर आ रहे थे, बहुत सारे विदेशी लोग यहां से मिलते चले गए हमको। मैं बात करते 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 ऊपर तक गए, हर जगह पर वो बंदर का फोटो निकाल रहे थे, कुछ खिला रहे थे, और वो बंदर भी उनके कंधे पे आकर बैठ के हाथ से खिला रहा था, फिर वो ऐसे कर रहा था, फिर बंदर ऐसे हाथ में पूरा, हाथ पर पूरा सो कर वो हाथ में जो है वो खाना खा रहा था, उसका फोटो निकाले जा रहे थे। ऐसे ही उनका गाइड भी उनको वही दिखाते 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 लेके जा रहे हैं, और ऊपर तक उनका वही चल रहा है। अभी गालव ऋषि की तपस्थली में आपको पता ही नहीं गालव ऋषि कौन है और क्या है, वो कौन है गालव ऋषि, तपस्या मतलब क्या होता है कुछ पता ही नहीं है, तो उनके लिए एक साइट सीन है ये। तो वहां पर जाके भी कोई चार्जिंग नहीं होता है, समझ में आपको आया? चार्जिंग तब होता है जब आपको नॉलेज होता है, अज्ञान में चार्जिंग नहीं होता है, ज्ञान है तो चार्जिंग होता है। अगर आपको पता है कि आप गालव ऋषि के तपस्या में जा रहे हो, आपका मूड अगर बदल जाएगा तो आपका चार्जिंग होगा, प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद मांगेंगे तो कृपा मिलेगी आपको। तो मैं वही प्रभु जी को बता रहा था कि देखो हम कितने भाग्यवान हैं, हम भारतीय हैं, हमारा जन्म इस जगह का है, और हम लोग ने बचपन से ये सब जाना हुआ है कि भगवान कौन है, सब हमको पता है बचपन से, कोई अलग ट्रेनिंग नहीं लिया हमने। ऐसे बच्चे बड़े बड़े होते ही हमारा रामायण रामलीला देखते देखते हमको, मैंने कभी रामायण पूरा नहीं पढ़ा है आज तक, लेकिन पूरा रामायण मुझे मालूम है रामायण। कारण क्या, बचपन में हर साल दशहरे के समय 10 दिन हम लोग रामलीला देखते थे, हमारे घर के सामने ही था वो पटांगण, हर साल देखना ही है, 6-6 घंटे शाम को 6 से लेकर रात को 12 बजे तक देखना ही है, पूरा रामायण पता हो गया, महाभारत पर ऐसे ही पता हो गया। पढ़ाई तो अभी बाद में किया, 20-22 साल में आने के बाद में, लेकिन ये सब ज्ञान बचपन से मिला है, हमारा कितना भाग्य है। इसलिए कहा गया है कि भारत भूमि ते हविलो मनुष्य जन्म जार, इसलिए कथा कहा गया कि ये भूमि का जन्म जो बहुत भाग्यशाली जन्म है। विदेशी लोग इतने दूर से आ रहे हैं, कितना टिकट में खर्च किया होगा, लाख रुपए शायद खर्च किए होंगे, कितना 5-स्टार होटल में रहते हैं और खाना पीना टैक्सी करके कितना खर्च किया होगा, लेकिन उनको इतना दूर आने के बाद भी पता नहीं चल रहा है कि क्या है क्या ये चीज। जो लाभ उनको मिलना चाहिए, मिल सकता है, वो उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। बस 50 बंदर के फोटो रहेंगे उनके इस जगह के, लेकिन पता नहीं रहेगा उनको कि हम लोग कहां पर आए। और हमारा भाग्य देखो कि हमको प्रभुपाद की कृपा से सब पता है, उन्होंने पता करा दिया है, समझा दिया है, इसलिए हम आके उस सार को ग्रहण कर सकते हैं। ये हमारा गर्व की बात नहीं, हमारा भाग्य की बात है। हमको नम्रता से अपना भाग्य को समझना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं। महाराज के साथ हम आए थे तो महाराज ने हमको बताया था, अभी हम आपको बता रहे हैं, और आगे जाके आप किसी को बताओगे, इसी तरह से आगे आगे ये नॉलेज चलते रहता है। लेकिन पहली बार तो किसी से सुनना पड़ेगा ना आप कि गालता जी क्या है, उधर क्या लीला हुई है। आपको लगता होगा इधर क्या है, इधर बहुत ही सुंदर लीला हुई है, वैसे कुछ नहीं है, सब ऐसे पिकनिक स्पॉट है, उधर लिखा है रमणीय स्थान है, पिकनिक कर सकते हो, ये कर सकते हो, पार्टी कर सकते हो, सब बोर्ड लगा के रखा है। लेकिन जो पवित्रता का जो महात्म्य है इस स्थान का, वो कोई नहीं जानता है, बहुत कम लोग जानते होंगे। तो हम लोगों को उनमें से नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थान में जाएंगे तो उसका आध्यात्मिक सार ग्रहण करने का भाग्य हमको मिलना चाहिए। तो इस स्थान में कथा ऐसी है कि आप जानते हैं, मैंने आपको वो तो कथा समझा दिया पूरा, कि जैसे राधा गोविंद जी जयपुर पहुंच गए, है ना, पूरा आपको समझा दिया। जयपुर पहुंचने के बाद में जयसिंह राजा ने, क्योंकि वहां पर राधा गोविंद जी की सेवा रूप गोस्वामी के अनुयायी कर रहे थे, मतलब गौड़िया संप्रदाय के लोग ही कर रहे थे, तो जब भगवान की मूर्ति यहां पर आ गई तो वही लोग आ गए, उनकी सेवा कंटिन्यू की है, और राजा जाकर गोविंद जी का भक्त बना। पहले भक्त था, श्रद्धालु था, लेकिन गोविंद जी के आने से उसके भक्ति में 4 चांद लग गए। होता है ना, हमारे घर में भी कोई यज्ञ हो गया, कोई पूजा हो गई, कुछ अधिष्ठान हो गया तो हमारा भी आध्यात्मिक उन्नति और उत्साह बढ़ता है ना। तो गोविंद जी साक्षात जब विश्व के मालिक आ गए उनके दरवाजे पे और उन्होंने अपने उनके लिए महल बनाया और अपना केंद्र स्थान अपने जयपुर का बनाया, तो उनकी भक्ति तो चार चांद आसमान छू गई। तो नेचुरली गोविंद जी के वजह से गौड़ीय वैष्णवों पर उनकी श्रद्धा बढ़ी, क्योंकि ये लोग आए, इन्होंने अपना एक अच्छा सेवा किया भगवान का, तो मेरी भी आध्यात्मिक उन्नति आनंद की प्राप्ति हुई, तो इनका संबंध जो है बहुत गहरा हो गया। लेकिन गोविंद जी के आने के पहले यहाँ पर रामानुज संप्रदाय के रामानंदी लोग रहा करते थे और वो राजा के आश्रय में थे, राजा उनकी देखभाल मेंटेनेंस सब करता था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि गौड़िया संप्रदाय वाले आ गए हैं और राजा भी उनसे ज्यादा लगाव उसका हो गया है, तो हो सकता है आगे जाके अपनों को निग्लेक्ट कर देगा, हमारा जो सुविधाएं उनके द्वारा से प्राप्त होती है ना, मेंटेनेंस है जो भी कुछ है या फेवर्स हैं या लाभ है, वो सब शायद आगे जाके घट सकते हैं, इनको रोको, ज्यादा पास आने मत दो राजा के, नहीं तो हमारा सब इधर खाली करना पड़ेगा खुद सी सब। इस तरह की ईर्ष्या हो गई। भक्त है वो, भक्त ऐसे अभक्त नहीं है, भक्त हैं, लेकिन भक्त लोग भी अगर सही संग नहीं है उनको तो द्वेषी बन सकते हैं, ईर्ष्या कर सकते हैं, अरे इनको तो मैंने भक्त बनाया, अभी देखो कैसे प्रवचन कर रहे हैं और मुझे भी कोई सुनता नहीं है, इनको सुनने जाता है तो मेरा दिल जलेगा, अरे मेरे बाद 50 साल के बाद आए फिर भी देखो इनका कितना कीर्ति बढ़ रही है, देखो कितने लोग भक्त उनके पैर छूते हैं और मुझे कोई देखता नहीं, मैं सीनियर हूं उनसे, ये विचार जो है ना ये आना स्वाभाविक है, लेकिन उसको पना देना अच्छा नहीं है। मन में ऐसे आएंगे हवा के झोंके की तरह, आपको उनको भगा देना है, ऐसे आप धूल गिर गया तो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना धूल, उस तरह से आपको तुरंत ऐसे निकाल देना है, उसको मन में चिपका देना नहीं उसको। तो भगवान के भक्त होने पर भी भौतिक सुविधाओं को देखते हुए उनके मन में ईर्ष्या पैदा होगी। देखो आप जस्ट सी, भौतिक सुविधा शायद नहीं मिलेगी आगे, दक्षिणा नहीं मिलेगी शायद, कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा, तो उन्होंने फिर षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, अपनी मीटिंग की षड्यंत्र वाली और तय किया कि इनको ना भगाना चाहिए यहां से, किसी भी तरह से इनको यहां से पदच्युत करना चाहिए। तो जयसिंह राजा को मिले, उनका भी था संपर्क उनसे, ओके मीटिंग करना है ठीक है मिलो, बोले ये जो लोग हैं ये योग्य संप्रदाय से नहीं है, पद्म पुराण के अनुसार केवल 4 संप्रदाय होते हैं, एक है कुमार संप्रदाय, सनत कुमारों द्वारा बनाया गया, एक है श्री संप्रदाय, एक है मध्व संप्रदाय और एक है रुद्र संप्रदाय, बस पद्म पुराण के अनुसार 4 ही बोनाफाइड संप्रदाय है, ये 4 में ये गौड़ीय संप्रदाय नहीं आता है, इसलिए आप इनको पूजा करने का अधिकार नहीं है, केवल इन 4 में से एक में जिनका दीक्षा हुआ है वही लोग भगवान के विग्रह की पूजा कर सकते हैं। दूसरी बात बोलते हैं कि भगवान नारायण 4 संप्रदाय में पूजे जाते हैं परम भगवान के रूप में, कहीं भी लक्ष्मी जी नहीं होती है उनके साथ, और ये कृष्ण के साथ आदरणीय रखे हुए हैं, ये भी अनबोनाफाइड है, क्योंकि आप देखिए श्रीलंका में जाइए कौन है उधर, केवल भगवान है, तिरुपति में जाइए केवल कृष्ण भगवान विष्णु भगवान है ना, द्वारका में जाइए वो एक द्वारकाधीश खड़े हैं वहां पर, साथ में नहीं खड़े हैं, इधर जहां पर भी विष्णु संप्रदाय है सब अकेले भगवान है, तिरुपति कांचीपुरम सब जगह पे एक ही विष्णु भगवान है, तो ये भी अनबोनाफाइड है। तो राजा को भी क्या, राजा थोड़ी विद्वान है, ऐसा अभी लॉजिकल बात बोल दिया तो बोला हाँ यार लगता है तो सही है, तो वो उन्होंने बुलाया गौड़ी संप्रदाय लोगों को कि आप लोग राधा गोविंद की सेवा कर रहे हो, इनको आप समझा दो, अगर आप लोग लगता है आप सही हो तो इनको आप अपने आप को डिफेंड करो, अपने आप को सिद्ध करो कि हम सही हैं, तो ठीक है फिर। और उन्होंने कहा कि अगर वो ये साबित नहीं कर सकते हैं कि वो योग्य हैं तो उनको अपनी पूजा का अधिकार छोड़ देना पड़ेगा और राधा रानी के विग्रह को यहां से निकाल देना पड़ेगा, और उन्होंने अपने बल से राजा को समझाकर राधा रानी का विग्रह जो है वहां से निकाल दिया गोविंद जी के साथ वाला। आपको सुनकर आश्चर्य होगा लेकिन हमारे मंदिर में हमने उसकी पूरी नाटिका की थी, पूरी नाटिका जयसिंह की, और जयसिंह का रोल मैंने किया था उसमें और गालता जी का प्रसंग भी उसमें था, ये जगह पर जो हम बैठे हुए हैं। तो जयसिंह को बड़ा दुख हुआ, वो तो बड़ा श्रद्धालु था उसको, लेकिन वो क्या है ना, टेक्निकली या फिलोसॉफिकली तत्व ज्ञान के सिद्धांत के दृष्टि से उनको डिफीट नहीं कर पाया और उनको मानना पड़ा। क्या करें, हमारे पास स्ट्रांग सबूत और या ऐसा कुछ आर्गुमेंट नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग जो है वो अपना बाजू जो है, अपना जो पक्ष है वो ठीक से प्रस्तुत करो। तो फिर उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो थे वैष्णव के लीडर थे और वो वृंदावन में थे, क्योंकि ये सब वृंदावन से आए थे ना वहाँ पर जयपुर में। तो वृंदावन में उनको खबर मिली कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अभी हम लोग को शायद पूजा छोड़नी पड़ेगी और राजा रानी को ऑलरेडी निकाल दिया है, तो अभी गौड़ीय संप्रदाय का जो सम्मान है उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन वो विश्वनाथ जी महाराज तो बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनको चलना भी मुमकिन नहीं था। तो उस समय उन्होंने बलदेव विद्याभूषण जी को बुलाया, और इनका छोटा सा इतिहास ऐसा है कि बलदेव विद्याभूषण जन्म से भगवान की ओर बड़े आकर्षित थे। तो जैसे जवान हो गए ना, वो घर छोड़ के चले गए और ढूंढने लगे कि कौन ऐसा गुरु है जो मुझे भगवान की प्राप्ति करा सकता है। भारत भर घूमे, जब कर्नाटक में आए और मध्वाचार्य के संप्रदाय में उनकी मुलाकात हुई तो बड़े प्रभावित हो गए। उनका सिद्धांत, उनका बुक्स, मध्वाचार्य की शिक्षाएं, बड़े प्रभावित हो गए वो, और उन्हीं के एक आचार्य से उन्होंने दीक्षा लिया मध्व संप्रदाय में। और फिर भारत में अपने भ्रमण सन्यासी के रूप में कर रहे थे तो वृंदावन पहुंच गए। तो वृंदावन पहुंच गए तो उनकी मुलाकात राधा दामोदर महाराज से हुई। एक स्वामी जी थे, वो गौड़ीय वैष्णव थे, और गौड़ीय वैष्णव के संग में उनको इतना महाप्रभु चैतन्य के विषय में ज्ञान मिला कि महाप्रभु चैतन्य कौन है, उनका सिद्धांत क्या है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, परम तत्व है वो अचिंत्य भेदाभेद तत्व। मतलब समझ में नहीं आता कैसे है, लेकिन भगवान एक साथ में सबसे छोटे भी हैं, सबसे बड़े भी हैं, भेद अभेद एक ही साथ में है, वो एक ही साथ में छोटे भी हैं बड़े, वैसा कैसे हो सकता है। मैं अभी 6 फुट हूँ, 6 फुट हूँ, मैं अणुमात्र भी हूँ और 12 फुट हूँ, ऐसा नहीं हो सकता ना एक साथ में। लेकिन भगवान एक ही साथ में अणु भी है और विभू भी है, तो ये अचिंत्य है, ये महाप्रभु चैतन्य का सिद्धांत है। तो वो सुनकर बड़े प्रभावित हो गए वो, और आगे की शिक्षा जो है वो उनसे प्राप्त की। फिर उनका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से भी मुलाकात हुआ तो उनसे भी शिक्षा और संग प्राप्त किया, और परम ज्ञान जो है चैतन्य महाप्रभु का, कृष्ण प्रेम का ज्ञान वो प्राप्त किया उन्होंने। तो उनको विश्वनाथ जी ने कहा कि आप जाओ उधर जयपुर में, अभी डिबेट होने वाला है, अभी राधा रानी को निकाल दिया है लेकिन अभी उधर उन्होंने डिबेट रखा है, वाद विवाद रखा है, आध्यात्मिक वाद विवाद, उसमें आपको जाकर गौड़ीय संप्रदाय की जो योग्यता है उसको सिद्ध करना है। ठीक है, चले गए उनका आशीर्वाद लेकर। तो राजा ने उनका वो है ना मंडप मंडप बनाया, उसका मंच बनाया, मंच में 2 पार्टी बनाया, उसमें अकेले बलदेव जी, वहाँ पर रामानंदी लोग बहुत सारे बैठे हुए थे। सबसे पहले उन्होंने बोला कि आपसे हम बात भी नहीं करेंगे जब तक आप नहीं बताएंगे आपका संप्रदाय कौन सा है, चारों में से एक संप्रदाय में आपका दीक्षा नहीं हुआ है तो आप हमारे से बात करने के भी योग्य नहीं है, और गौड़ीय संप्रदाय को हम मानते नहीं कि बोनाफाइड है। तो उन्होंने बताया, देखिए मैं कर्नाटक के मध्वाचार्य संप्रदाय से दीक्षित हूँ, इसलिए मेरा यहाँ बैठकर आपसे वाद विवाद करने का अधिकार है, और आगे जाकर मैंने गौड़ीय संप्रदाय के भक्तों से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और राधा दामोदर महाराज से शिक्षा प्राप्त की है। और फिर उन्होंने एक ग्रंथ निकाला, थोड़ा कम करो आवाज, गौर गणोदेश दीपिका ऐसा उस ग्रंथ का नाम है। उस ग्रंथ में कृष्ण भगवान की लीला में कितने कितने भक्त थे, वो गौरांग महाप्रभु की लीला में कौन से भक्त बनकर आए, इसका वर्णन दिया है। फॉर एग्जाम्पल, नारद मुनि श्रीवास ठाकुर बनकर आए, महाविष्णु अद्वैत आचार्य बनकर आए, नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी थे वो नित्यानंद बनकर आए, हाँ विश्वानु महाराज जो राधा रानी के पिता थे वो पुंडरीक विद्यानिधि बनकर आए, बृहस्पति जी सार्वभौम भट्टाचार्य बनकर आए, ऐसे सारे भक्तों का नाम और वर्णन दिया है। ललिता सखी जो है वो स्वरूप दामोदर बन के आई, विशाखा सखी जो है वो रामानंद राय बनकर आई, ऐसे सब लोगों का कौन कौन क्या क्या बनकर आए। क्योंकि गौरांग महाप्रभु का विशेषता ऐसा है कि गौरांग महाप्रभु के संप्रदाय जब जन्म हुआ तो उनकी लीला में चारों युगों के जितने भक्त थे ना वो सब आ गए। फॉर एग्जाम्पल, प्रहलाद जी भी वासुदेव दत्त बनकर आए, सत्ययुग के, द्वापर के, त्रेता के, भगवान के अलग अलग अवतारों के भक्त नरसिंह भगवान के भक्त प्रहलाद जी, वामन देव के भक्त बलि, ऐसे जितने भगवान के अवतार हुए उनके सारे भक्त जो है वो नया रूप लेकर गौरांग महाप्रभु की लीला में प्रकट हुए। वरना कैसे होता है, जब नरसिंह भगवान अवतार लेते हैं तो उन्हीं के भक्त लोग वहां पर अवतार लेते हैं उस समय लीला करने के लिए। लेकिन गौरांग महाप्रभु के अवतार में जितने भी अवतार हुए सत्येक से लेकर, उनके सारे भक्त लोग जो है नया रूप लेकर भगवान की सेवा में पहुंच गए। जरासंध जो है ना वो नवाब हुसैन शाह बनकर आया, कंस जो है वो चांद काजी बनकर आया, सब लोग अपना अपना रोल लेकर आए। बोले महाप्रभु का लीला में हमको भाग लेना ही है, विलन का हो या हीरो का हो, ड्रामा में पार्ट लेना है। बोले पहरेदार बनना है तो भी लेना है, ड्रामा में पार्ट मिलना चाहिए, कोई ना कोई रोल मिलना चाहिए। ये ड्रामा बहुत सुपरफ्लोस ड्रामा है, इसमें तो कुछ ना कुछ रोल तो मिलना ही चाहिए, कम से कम ड्रामा के लिस्ट में तो नाम तो आएगा ना कि हम लोग पहरेदार बने थे। ये भाव से महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए सभी लोग आए। तो वो शास्त्र है गौर गणोदेश दीपिका, उसमें से उन्होंने ये प्रमाण दिया कि गौड़ीय संप्रदाय जो है ना वो मध्वाचार्य से जुड़ा हुआ है। कैसे, मध्वाचार्य के परंपरा में लक्ष्मीपति तीर्थ करके एक संत आते हैं, उन्होंने नित्यानंद प्रभु को दीक्षा दिया और बहुत बड़े बड़े अद्वैत आचार्य जैसे महान भक्तों को दीक्षा दिया। लक्ष्मीपति तीर्थ ने फिर ईश्वरपुरी को भी दीक्षा दिया, ईश्वरपुरी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा दिया जो स्वयं भगवान है। इस तरह से ये गौड़ीय संप्रदाय मध्व संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, उसकी एक शाखा है, आपको पता नहीं है लेकिन ये प्रमाण दे रहा हूं आपको मैं। तो फिर उनको एक बात माननी पड़ेगी, ये बात तो सही है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। फिर उन्होंने फिर उन्होंने बताया कि ये आप राधारानी की सेवा करते हो, तो उन्होंने फिर भागवत से और कई उपनिषदों से ये प्रमाण दिया कि कैसे राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति क्या है, बहिरंगा शक्ति क्या है, बहिरंगा शक्ति पार्वती देवी है, अंतरंगा शक्ति राधा रानी है, और हम सब लोग जीव जो है वो तटस्थ शक्ति हैं, बीच वाले जीव हैं हम सब लोग, और शिव तत्व है जो 55 गुण वाले हैं, हरी शिव तत्व जो है वो 55 गुण वाले हैं, ब्रह्म तत्व 50 गुण वाले हैं, विष्णु तत्व 60 गुण वाले हैं, और कृष्ण तत्व 64 गुण वाले हैं, ये सब कुछ समझा दिया। और भगवान की परास्त शक्ति विविध ही वसूए थे, भगवान की शक्तियों का वर्णन किया और राधा रानी का स्थान इस्टेब्लिश किया। जो नारायण के साथ रहती है वो लक्ष्मी जी हैं, और वही लक्ष्मी जी कृष्ण के साथ में राधा रानी के रूप में मूल शक्ति के रूप में उपस्थित रहती है। तो उनको समझ में आया कि भी हम लोग हार रहे हैं, ये व्यक्ति सब कुछ हमको समझा रहे हैं, प्रमाण देकर समझा रहे हैं, तो अभी इनको हमको स्मैश करना था। देखो उनका वाद विवाद करके ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं था, वाद विवाद करके इनको हराना और भगाना ये उनका उद्देश्य था, उद्देश्य ही कलेशयुक्त था उनका, तो पर्पज ओनली कंटेमिनेटेड। तो डर लगने लगा कि हम हारेंगे तो हम तो ही रद्द पार हो जाएंगे यहां से। तो उन्होंने फिर एक नया और एक निकाला, कहते हैं कि अगर आपका संप्रदाय सही है तो आपके संप्रदाय में वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य होना चाहिए, और हम जानते हैं कि आपके अंदर वेदांत सूत्र का भाष्य नहीं है। तो अगर आप वेदांत सूत्र पर भाष्य आपके पास है तो ही आगे की सेवा आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मध्वाचार्य में, श्री संप्रदाय में, रुद्र संप्रदाय में, कुमार संप्रदाय में, सब में वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य किया हुआ है बोनाफाइड। तब ये तो फाइनल गुगले हो गया ना, अभी इतना करने के बाद भी आपको भागना ही यहां से, ऐसे हो गया ना कि वॉट एवर यू डन, वॉट एवर यू सेड, यू हैव टू फील गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। तो उन्होंने कहा कि मैं लिखूंगा उसको। जो लोग हंसने लगे तो उनको पता था कि वेदांत सूत्र पर भाष्य करना कई सालों की बात है, अरे अभी आरंभ करेंगे तो कब फिनिश करेंगे, थोड़ी हम लोग अब तक बैठेंगे, तब तक तो हम लोग राधा रानी को निकाल देंगे, आपको भी निकाल देंगे, आप बनाते रहना उसको, जब बन जाएगी तो हम लोग स्टडी करेंगे उसको, बोनाफाइड है कि नहीं है, तब आपको वापस ले लेंगे। तब तक क्या होगा आगे जाकर, कितने साल में हम देख लेंगे कि आप वापस नहीं आएंगे लौट के। अभी आपको पदच्युत कर लिया और समय खरीद लिया, समय ले लिया हमारे हाथ में, तो आपको हम भारी कर सकते हैं। अभी उनको पता था कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ये कहा है कि श्रीमद् भागवत ये वेदांत सूत्र पर किया हुआ बोनाफाइड भाष्य है। स्वयं व्यास देव ने वेदांत सूत्रों पर जो कमेंट्री दिया है उसी को श्रीमद् भागवतम कहते हैं। ये सब जानते हैं लेकिन वो जानकर भी अनजान बनना चाहते थे। मायावादियों के जीवन में श्रीमद् भागवत का कोई स्थान नहीं है, वो केवल वेद और वेदांत सूत्र को मानते हैं, बस भगवान की लीला का कोई स्थान नहीं है। तो भी क्या करें, बलदेव जी समझ गए कि मैं तो जानता हूं कि हमारे संप्रदाय में भागवत जी ही वेदांत सूत्र पर कमेंट्री है बोनोफाइड, हमको और कुछ जरूरत नहीं है, महाप्रभु चैतन्य ने समझाया है, शिक्षा दिया है, लेकिन इनको क्या समझाएंगे, ये तो समझ में नहीं आएगा उनको, तो भी क्या करेंगे, अभी तो एकदम ऐसी स्थिति में आ गए कि रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो वो गोविंद जी के मंदिर में आए। अभी ये सब वाद विवाद कहां हुआ, इस जगह पर हुआ, गालताची में, जहां पर हम बैठे हुए, जयसिंह राजा बैठे हुए हैं, जयसिंह राजा को बहुत प्रेम है इनके ऊपर, गौड़िया के ऊपर, लेकिन वो टेंशन में है कि क्या हो रहा है, अभी ये जीतेंगे कि हारेंगे, क्या होगा, ऐसे देख रहे हैं, वो प्रेक्षक के रूप में देख रहे हैं, रानी के साथ बैठे हुए हैं। तो इस जगह पर, इस स्थिति पर वो वहां का दिन का, उस दिन का वाद विवाद समाप्त होता है और ये कहते हैं मैं आऊंगा, अभी भाष्य लेकर आऊंगा। तो भक्त कैसे होता है, देखो भक्त का हृदय कैसे होता है, एक जगह पर तो शास्त्र के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, एकदम फिलोसॉफिकल पीएचडी डिस्कशन चल रहा है, लेकिन हृदय से तो बहुत नम्र भक्त है, कोई गर्व नहीं हमको, तो सेवा करने आए तो सीधे जाते हैं गोविंद जी मंदिर में जयपुर में, और गोविंद जी के पास बैठकर रोते हैं, क्या भगवान अभी आपकी सेवा तो छूट जाएगी हमारी, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय, साक्षात भगवान का संप्रदाय है, साक्षात भगवान ने मध्वाचार्य के संप्रदाय में दीक्षा लेकर इसको गौड़ीय संप्रदाय बनाया है, उसकी आज लाज कौन रखेगा। मैं आपसे भिक्षा मांगता हूं कि आप ही हमको बचा सकते हैं। तो उसी रात को श्री गोविंद देव, कुछ लोग कहते हैं प्रत्यक्ष प्रकट हो गए, कुछ लोग कहते हैं स्वप्न में आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बलदेव विद्याभूषण के सामने भगवान प्रकट हुए और भगवान ने उनको वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री डिक्टेट किया, रेडीमेड, भगवान ने वेदांत सूत्र का भाष्य उनको सुनाया और उन्होंने एक ही रात में पूरा उतार दिया उसको। कैन यू इमेजिन दिस, जो सालों सालों का काम है वो एक रात में भगवान की कृपा से रेडी भाष्य तैयार हो गया और नेक्स्ट मॉर्निंग पहुंच गए वो। तो उनको देखो आश्चर्य हो गया, मतलब कुछ बकवास लिख के लाया होगा, एक रात में क्या लिखेगा। तो देखा उन्होंने और उसको समझाया पूरा उनको, तो वहीं से वो दफा हुए, चले गए वहां से, कुछ बोल ही नहीं पाए वो, क्योंकि जो भगवान के मुख से निकला है भाष्य उसको कौन चैलेंज कर सकता है। जब आप सिद्धांत पे बात कर रहे हो तो सिद्धांत पे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, आप ऐसे बेफजूल की बातें नहीं कर सकते। अगर आप मेडिकल में चर्चा करने को बैठ गए तो मैं मेडिकल में बात करूंगा लॉजिकल, तो आपको उसी पे लेवल बात करना पड़ेगा, ऐसे बेफजूल की बातें थोड़ी कर सकते हैं। तो सिद्धांत रूप में जब ये गोविंद भाष्य जो भगवान ने बताया उसको गोविंद भाष्य का नाम दिया गया, नाम गोविंद भाष्य वो जो प्रस्तुत किया उन्होंने, तो रामानंदी हार गए और वो चले गए। और फिर जयसिंह महाराज ने बड़े प्रेम से उनको गले लगाया और बड़े प्रेम से राधा रानी के विग्रह को वापस अपने गोविंद जी के बाजू में रखा और बड़े प्रेम से गौड़ियों को वापस बुलाया, बोला आप ही इसकी सेवा करो, आपकी बढ़िया सेवा कौन नहीं कर सकता है, आप इतने सरल हृदय हो, नम्र हो, निर्द्वेषी हो, आपके मन में कोई ईर्ष्या नहीं है, ऐसे भक्त तो मुझे पहली बार मिले हुए हैं। इन लोगों को देख के मैं परेशान हो गया हूँ, कितनी ईर्ष्या, कितना पद के लिए लालसा, कितना लाभ के लिए लालसा, कितना भोग के लिए लालसा, हाँ राजा का अनुग्रह हमको प्राप्त हो जाए, उनका फेवर प्राप्त हो जाए, कितनी मेहनत कर रहे हैं बेकार की भक्त बनकर। तो हृदय तो उनका गौड़ियों के पास ही था, लेकिन क्या करें, तत्वता तो उनको सिद्ध करना ही था कि योग्य लोग हैं। तो ऐसे बलदेव विद्याभूषण ने फिर यहाँ पर गौड़ी संप्रदाय को मान्यता प्राप्त करके दी है। बलदेव विद्याभूषण महाराज की इन्हीं बलदेव विद्याभूषण ने भगवद गीता पर भाष्य लिखा है, वो स्वयं लिखा है, उसका नाम है गीता भूषण, वो ग्रंथ भी अवेलेबल है, हमारे मंदिर में मिलता है। और हमारे प्रभुपाद जी ने भी भगवत गीता के ऊपर भाष्य लिखा है ना, अमेरिका जाने के पहले उन्होंने भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री लिखा इंग्लिश में और श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड पे तीन खंड के अनुवाद किए उन्होंने, प्रथम स्कंद का ही अनुवाद किया, अभी 11 स्कंद बाकी है, लेकिन वो तीन खंड प्रथम स्कंद के अनुवाद और भगवत गीता लेकर वो गए थे अमेरिका। तो जब उन्होंने भगवत गीता का अनुवाद इंग्लिश में पूर्ण किया तो आगे लिखा बलदेव विद्याभूषण जी को समर्पित, हम लिखते हैं ना कि मेरे माता पिता को समर्पित, ये किताब मेरे माता पिता को, मेरी छोटी बहन को या मेरा बालक को समर्पित, वैसे उन्होंने उनका गीता को, जो गीता का भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता क्या कहते हैं उसको, यथारूप जसी आए तसी, वो उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को समर्पित किया हुआ है। और बहुत सुंदर कमेंट्री है उनकी, काफी सारे बलदेव विद्याभूषण के गीता भूषण नाम के ग्रंथ के काफी पॉइंट्स श्लोक वाइज प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में सम्मिलित किए हुए हैं। अभी यहाँ पर हमारे परम पूज्य गिरिराज महाराज जी ने प्रवचन किया है, तो जब उनको वापस माइक्रोफोन दिया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे प्रभुपाद जी बड़े चाणाक्ष थे और मायावादी लोगों का बहुत क्या बोलते हैं इसको कठोरता से खंडन करते थे, वेरी स्ट्रांगली ही वुड चैस्टाइज देम। तो उन्होंने कहा कि ये मायावादी लोग वेदांत वेदांत करते रहते हैं, ये वेदांत का मतलब क्या है, वेद वे दंत, गौड़ियों ने इनको दंत विहीन कर दिया है, वे मतलब विदाउट और दंत मतलब दांत, तो गौड़िया वैष्णव के लोगों ने उनको विदाउट टीथ मतलब दांत तोड़ दिए उनके। और वेद दंत का वेदांत का और एक अर्थ है कि एंड ऑफ नॉलेज, तो ने कहा कि वेद दंत का और एक भी अर्थ है नो टीथ विदाउट टीथ, एक तो गौड़ियों ने उनको परास्त कर दिया है और एक उनके मुंह में दांत ही नहीं है, ऐसे एक तरह से प्रभुपाद ने उनको बताया है। तो वैष्णव सिद्धांत जो है वो सारे वेदांत सिद्धांत को डिफीट कर देता है। इस तरह से आज हम लोग यहाँ पर गौड़ीय तिलक लगाकर गौड़ीय सिद्धांत को लेकर दीक्षित लेकर बैठे हुए हैं, अगर बलदेव विद्याभूषण जी उस समय ये कार्य नहीं करते तो हम कहीं के नहीं होते। आज जो भी मान्यता है गौड़ीय संप्रदाय को पूरा विश्व भर में प्रभुपाद जी ने उसको फैला दिया है। एक समय था वो नष्ट होने वाला था, उस नाटिका का नाम था उनमें क्या, स्पिरिचुअल रेनेसांस, आध्यात्मिक पुनर्जागृति, मतलब आध्यात्मिक जो नष्ट होने का समय था उसको बलदेव विद्याभूषण ने विश्वनाथ जी चक्रवर्ती पाद के कृपा से एक तरह से संजीवनी दिया, जीवन दान दिया गौड़ीय संप्रदाय को, तो वहीं पर वो समाप्त होने वाला था। एक बार आध्यात्मिक समाज ने उसको अगर नकार दिया पूरा, हाँ मान्यता निकाल दिया, नो मोर रिकग्निशन, तो वहाँ की डिग्री को कौन पूछता है। हमारे हॉस्पिटल में एक नर्स है उधर वृंदावन में, उसने वो नर्सिंग का कोर्स पूरा किया, हमारे पास नर्स के रूप में 5 साल काम भी किया, उसके बाद में न्यूज़ आया कि जो कॉलेज था वो अनबोनाफाइड था। 5 साल GNM नर्स होने के बाद नर्स के रूप में सेवा करके नर्स की तनख्वाह लेके उसको पता चला कि अभी वो कॉलेज का ही मान्यता नहीं है, तो वो 12th पास हो गई, मतलब उसकी शी हैज कम बैक टू 12th पास सिचुएशन। अभी वो हेल्थ केयर असिस्टेंट के रूप में हमारे पास काम करती है, क्योंकि उसका डिग्री नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, अभी कॉरेस्पॉन्डेंस में BSc कर रही है। तो वैसे हम भी गौड़िया गौड़िया बनते, लेकिन गौड़िया को अगर आध्यात्मिक जगत में मान्यता नहीं है तो हमारा कहीं भी ठिकाना नहीं, ऐसे हो जाता। वो बलदेव जी ने बचा लिया है, हम सबके बलदेव जी की बहुत ऋणी है और आभारी है। और यहाँ पर और भी एक लीला हुई है जो हमारे संप्रदाय की नहीं है लेकिन बहुत सुंदर लीला है, वो ये है कि ब्रह्मा जी ने, आपको पता है ना कि भगवान के बालकों को छीना, बच्चों को छीना, और भगवान को बड़ा दुख दिया उन्होंने, क्योंकि तो भगवान को ना सबसे बड़ा दुख अपने भक्तों से अलग होने से होता है। आप कभी भी भगवान को देखें अकेले रहते कभी वो नहीं, हमेशा अपने भक्तों से भरे रहते हैं, घिरे रहते हैं चारों तरफ से, कभी भी अकेले रहते नहीं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे भक्तों से उनको अलग कर दिया, सभी बच्चों को बाल बालों को छीन लिया, अकेला कर दिया कृष्ण को, तो भगवान को अच्छा नहीं लगा वो। बाद में भगवान ने बहुत चमत्कार दिखाया, उनको होश में लाया, वो सब ठीक है, लेकिन वो होता है देखो आपने भी, मैंने आपको गाली दिया और आपको बहुत दुख हुआ, बाद में 50 बार दंडवत किया, प्रभु जी माफ करना, पैर छुआ आपको, लेकिन आपको वो जो गाली का दुख है वो तो याद रहेगा ही, जिस समय आपने दिया मुझे, मैंने आपको दिया था, है ना, कितना भी मैं माफ करूंगा, गले मिलूंगा, मिठाई खिलाऊंगा आपको, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो तो दर्द जो हुआ था ना वो याद रहेगा। उस तरह से ब्रह्मा जी ने भी स्तुति किया भगवान का और बहुत सारा काम किया ब्रह्मा जी ने, फिर भी ब्रह्मा जी को पूरी तरह से वो नहीं मिला, क्या कहते हैं उसको, क्षमा कहे या कुछ भी कहे, भगवान ने तो कर दिया क्षमा उनको, लेकिन ब्रह्मा जी का पश्चाताप जो है ना वो पूरा नहीं हुआ, मतलब उनको लगा कि मैंने इतना बड़ा पाप किया, ब्रह्मा जी बनकर भी मैं इतना कैसे कर सकता हूँ। हाँ ब्रह्मा जी मतलब इस सृष्टि के निर्माण में सबसे पहले व्यक्ति है, भगवान ने उनको पहले निर्माण किया और उन्होंने सारा सृष्टि बाद में निर्माण किया है, इस तरह का CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो पूरे यूनिवर्स के, फर्स्ट सिटीजन, प्रथम नागरिक है वो इस विश्व के, उनको जितनी बुद्धि भगवान ने दिया वो किसी को नहीं दी है, जितना ज्ञान दिया किसी को नहीं दिया, जितनी शक्ति दी है किसी ने नहीं दिया, जितना अधिकार दिया वो किसी को नहीं दिया है। तो ब्रह्मा जी खुद सोच रहे कि मेरे पास इतना सारा भगवान ने दिया हुआ है, फिर भी मैं इतनी मूर्खता कैसे कर सकता हूँ। बहुत दुख हुआ उनको। उधर एक ब्रह्म कुंड है वृंदावन में, वहां पर ना वो जाके रोए अपनी चार आंखों से, आठ आंखों से रोए ना, तो एकदम विशाल कुंड पैदा हो गया। जो एक 5 मंजिल की बिल्डिंग होगी ना, 6 विंग वाली 5 मंजिल की बिल्डिंग, तो भक्ति उतना हॉस्पिटल रहेगा समझो, वो अगर जमीन के अंदर रहेगा तो कितना गहरा रहेगा, उतना बड़ा कुंड है वो। उसमें खाली क्या था, ब्रह्मा जी ने बहाए हुए आंसू थे, कितना विशाल होगा वो। फिर भी उनका मन नहीं भरा, तो उधर नवद्वीप में गए, उधर तपस्या किया, भगवान को प्रसन्न कराया, बोला भगवान वादा करो कि मैं अगली बार ब्रह्मा नहीं बनना चाहता। आप लोग ऐसा बोल सकते हो क्या, ब्रह्मा बना हुआ व्यक्ति बोल रहा है मुझे अगली बार ब्रह्मा नहीं बनना है, मुझे कोई पोजीशन नहीं चाहिए, कोई अधिकार नहीं चाहिए, कोई शक्ति नहीं चाहिए, कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, मुझे तुच्छ जीवन दो, कोई सम्मान न करे मेरा, सबसे शूद्र के शूद्र से नीचे का जीवन मुझे दो, लेकिन आपकी सेवा में रखो। ये आपको भक्तों से अलग करने का पाप वगैरह मुझे अभी आगे नहीं करना है, मैं बहुत पछता चुका हूँ। फिर वो हरिदास ठाकुर बनकर आए, भगवान ने उनको दर्शन दिया और वादा किया। वो एक जगह पर है, फिर भी ब्रह्मा जी एक और जन्म लेकर आए नाभा गोस्वामी के रूप में। क्यों आए, क्योंकि उनको जो उन्होंने भक्तों को जुदा किया था भगवान से, उनको दोबारा भगवान से जुड़ाना था उनको, लेकिन एक दिव्य तरीके से, काव्यात्मक तरीके से, वेरी एसोटेरिकली, वेरी स्पिरिचुअली, ही वांटेड टू यूनाइट द लॉर्ड विथ हिज डिवोटीज। तो नाभाजी जो हैं, उन्होंने जन्म ही लिया केवल भगवान के भक्तों का चरित्र गाने के लिए, उनकी दीक्षा थी। तो इस जगह पर नाभाजी आए और उनके गुरुजी यहाँ पर तपस्या करते थे, उनका नाम था अग्रदास जी। और अग्रदास जी बड़े सिद्ध महात्मा थे, वो सारी जो उनका भजन था ना वो मन से करते थे, वो मन में भगवान की सेवा करते थे, भगवान के विग्रहों को श्रृंगार करते थे, मन में भगवान को भोजन बना के भोग लगाया करते थे, सब कुछ मानसिक था और वास्तविक अनुभव किया करते थे उसका, वो भगवान के दर्शन का। ऐसा नहीं कि मन में ऐसे कल्पना करके कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं, स्पेकुलेशन नहीं करते थे, उनको साक्षात मन में भगवान के दर्शन होकर वो भगवान की सेवा करते थे प्रत्यक्ष। तो यहाँ पर कई योगी लोग आए, ऐसे ही मायावादी लोग, और वो उनका उनको ऐसा एक नाम था कनफटे योगी। वो योगी आकर उनको तपस्या में बाधा डालने लगे। एक योगी तो ऐसा है कि वो शेर बनकर आया रूप बदलकर अपने योगी बल से, और अग्रदास जी को कष्ट देने लगा। तो अग्रदास जी परेशान होकर बोले गधा बन जा, तो तुरंत वो शेर गधा बन गया, वापस वो मनुष्य नहीं बन पाया, जैसे वो योगी के रूप से बना था ना, परमानेंट गधा ही बन गया वो। ऐसे पावरफुल योगी थे वो अग्रदास जी महाराज, लेकिन भक्त थे वो। फिर वो जो गधा बना हुआ योगी था वो उनका शिष्य बन गया, सुधर गया वो। फिर पश्चाताप से उन्होंने अग्रदास जी के लिए लकड़ी लेके आना, कोई उनके यज्ञ के लिए, किसके लिए, और उनकी वजह से आगे जो बाकी के योगी थे ना, जो पहले कष्ट देते थे, वो भी इनके अनुयायी बन गए और वो भी इन महाराज की सेवा में लग गए, निम्न सेवा करने लगे, अपना सारा योगी का अहंकार छोड़कर। अभी एक दिन क्या हुआ, नाभाजी भी आए यहाँ पर, नाभाजी को दीक्षा दिया उन्होंने, स्वीकार किया गुरु के रूप में। तो एक दिन अग्रदास जी राम भगवान की मानसिक सेवा कर रहे थे, राम के भक्त थे वो, प्रभु रामचंद्र के, तो प्रभु राम की मानसिक सेवा कर रहे थे वो। उतने में अग्रदास जी का एक शिष्य कहीं और नदी में उसका जहाज डूब रहा था, वैसे सिद्ध महात्मा थे वो, तो उनको उस भक्त की पुकार सुनाई पड़ी, वो गुरु जी को पुकार रहे हैं संकट में। हमको भी गुरु जी को संकट में पुकारना चाहिए, याद रखना, मम्मी डैडी डॉक्टर बैंक बैलेंस वकील को बुलाना नहीं चाहिए संकट आने के बाद, संकट आने के बाद भगवान को पुकारना चाहिए, या भगवान के प्रतिनिधि गुरु जी को पुकारना चाहिए। तो जब उसका जहाज पानी में डूब रहा है, वो भी खुद डूब रहा है, तो वहां पुकार रहा है गुरु महाराज, गुरु महाराज। तो नाभाजी भी बड़े सिद्ध महात्मा थे, तो उनको भी समझ में आया कि मेरे गुरु जी मानस पूजा कर रहे हैं, मैं उनके मानस पूजा में पंखा देकर सेवा कर रहा हूँ, वैसे खड़े हैं, आप मानस पूजा कर रहे हो और मैं पंखा दे रहा हूँ। तो उनको तो भी ध्यान में आया कि गुरु जी को भी ध्यान में आया कि मैं तो सेवा राम जी की कर रहा हूँ, लेकिन मेरा भक्त वहां मुझे पुकार रहा है, अभी मैं क्या करूँ, राम जी की मानसिक सेवा करूँ कि उनके मेरे भक्त को बचाने को जाऊँ। तो नाभाजी ने क्या किया, अपना पंखा ऐसे हिलाया, उसका डूबने वाला जहाज वहां से बचा लिया अपने तपोबल से। तो गुरु जी को समझ में आया कि जो मुझे करना था मेरे शिष्य ने मेरे लिए ऑलरेडी कर दिया। तो क्या बोलते हैं उनको वो, सुनिए ध्यान से, तू जहां पहुंचा, तू वहां पहुंचा जहां मैं पहुंचा। अभी तक तो जहां जहां मैं पहुंच रहा हूं वहां तुम भी पहुंच रहे हो, लेकिन आज तू वहां भी पहुंचा जहां मैं अब तक पहुंचा नहीं। समझ में आपको है? मुझे वहां पहुंच के उसको बचाना था, लेकिन तू मेरे से पहले जाकर वहां पहुंच के उसको बचाया। आज तुम धन्य हो गए हो, अभी आप भगवान के चरित्र का वर्णन करो। तो उन्होंने 24 अवतारों की कथा की इसी जगह पर। भगवान के 24 अवतार भागवतम में उनका वर्णन दिया है, दत्तात्रेय, बहुत सारे अवतारों का। लेकिन भक्तों के चरित्र का वर्णन करने का अधिकार अब तक प्राप्त नहीं हुआ था। वो कब प्राप्त हो गया? जब उन्होंने राधा रानी के चरित्र का वर्णन किया, तब जाकर ऐसा है ना। देखिए ये जब जिनका जन्म जब हुआ था ना, तभी ये सारे जो अवतारों का वर्णन उन्होंने किया है वो तो पहले हो चुके हैं ना। और जो भक्त का उन्होंने वर्णन किया है, भक्तों के चरित्र का, वो भी बहुत पहले हो चुके हैं। तो जब उनको आज्ञा मिली कि आपको भक्त का चरित्र वर्णन करना है, तो बोले मैं जानता तो कुछ नहीं हूं, कैसे वर्णन करूंगा। तो अगरदास जी ने बोला कि आपको हर एक भक्त आके दर्शन देंगे और अपनी कथा सुनाएंगे, और वो आपको दोहराना है, वो लिखना भी है और दोहराना भी है। मेरी ऐसी कृपा आप पर होगी कि सारे जो गुजरे हुए भक्त हैं, वैष्णव महान भक्त हैं, वो स्वयं आपके सामने दर्शन देंगे आपको, स्वप्न में हो, मन में हो, सामने प्रत्यक्ष हो, लेकिन अपने जीवन की कहानी अपने मुख से आपको सुनाएंगे, और वो आपको याद भी रहेगा। फिर आपको उसको उतारना और फिर लोगों के लिए कथा करना। तो जब उन्होंने राधा रानी की कथा किया, उसके बाद में सारे संतों का दर्शन होना आरंभ हो गया, क्योंकि उनको वैष्णव भक्तों की कथा करने का आदेश प्राप्त हुआ था। बाकी सब तो अवतार का वर्णन कर रहे थे, लेकिन भक्त चरित्र का प्रेरणा तक नहीं हुआ था। कहते हैं कि उसके बाद में उनको जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि वैष्णव भक्तों का दर्शन हुआ और उनकी कथा उनको सुनाई गई और वो उन्होंने सुनाया। तो एक ग्रंथ है भक्तमाल नाम का, उसके अंदर जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इनकी भी कथाएं आती है, और भी अन्य संप्रदायों के भक्तों की कथा आती है। तो एक तरह से उन्होंने भक्त चरित्र गाकर, जैसे समझो एक भक्त चरित्र एक फूल है, समझो आप एक चरित्र एक फूल की तरह है, तो अनेक चरित्र गाकर एक सुंदर माला बनाई और वो उन्होंने भगवान को पहनाई। इस तरह से उन्होंने भगवान को जो जुदा किया था भक्तों से, उनसे दोबारा मिलवाया। भाव की बात है ये, बहुत काव्यात्मक और बहुत पोएटिक बात है ये, तो समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसे नामा जी का जो भक्तमाल का वर्णन है वो इस जगह पर हुआ है। एक और कथा मुझे याद आती है इसके कनेक्शन में कि ये जो यस
कितने साल पहले
हुआ, ये कम से कम 400 साल पहले हुए हैं, लेकिन रूप सनातन इनके समय के बाद में हुए। जब मैं वृंदावन में था ना, तो हमारे वृंदावन के आश्रम में एक मथुरादास जी आते थे, वो भक्तमाल की कथा करते थे। और भक्तमाल मतलब क्या? भक्तों की माला, भक्तों के चरित्र की माला, उसको भक्तमाल कहते हैं। उसके 6 खंड हैं, और फिर उनके बाद में कोई लोग, बहुत लोग उनके अनुयायी बने और वो सब भक्तमाली बने, भक्तमाल कथा करने वाले। तो एक परशुराम भक्त थे उनके अनुयायियों में, वो एक बार गोविंद जी के मंदिर में आए और उन्होंने भक्त चरित्र सुनाना आरंभ किया। कुछ दिन कथा किया और उसमें विराम लिया और कहीं चले गए वो, और दोबारा लौट के आए। उनकी कथा का प्रोग्राम था, दोबारा लौट के आए तो वही श्रोतृवृंद थे जैसे आप लोग हर जगह मेरे पास आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, बताओ आखिरी कथा किसकी गति बने? दुर्भाग्य से एक भी भक्त जो है उनको बता नहीं पाया कि आपने लास्ट स्टोरी कौन सी किया था। शायद सो गए होंगे कथा में, क्या मालूम, हो सकता है। उनका परीक्षा लेने के लिए उन्होंने पूछा, आप मुझे बताओ लास्ट कथा मेरी मैंने किसकी की थी, उसके आगे की फिर मैं कहूंगा आज से। तो कोई नहीं बता पाया, तो उन्होंने कहा कि मैं कथा नहीं करूंगा, आपको याद करना ही होगा, मैंने इतना श्रम करके कथा बताया, आपको याद भी नहीं आ रहा तो क्या फायदा उसका। इसलिए ऐसे ही वो दुत्कार रहे उनको। रात में स्वप्न में गोविंद जी आए और गोविंद जी ने उनको बताया कि किसकी कथा आपने लास्ट किया है। और गोविंद जी क्या बोलते हैं उनको? गोविंद जी बोलते हैं कि कथा का यजमान तो मैं हूं, आपने मेरे मंदिर में कथा किया ना, मैं सुन रहा था उसको, यजमान सबकी व्यवस्था करना मेरा, मेरे आधिपत्य में, तो आप मुझे पूछिए ना आखिरी कथा किसकी, मैं बता रहा हूं आपको, आपने रैदास की कथा आखिरी की थी। तो फिर अगले दिन भाग के आए वो परशुराम भक्त, उन्होंने फिर रैदास वाली कथा से आगे कथा फ्री, दो महीने तक कथा किया, उसके बाद में सारा चरित्र भक्तों का सुना दिया, सब सभी संप्रदायों के भक्तों का। तो भगवान जो है ना, वो ये मत समझना कि भगवान बहुत मैकेनिकल है, तो ऐसी मूर्ति है, भाव नहीं रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। भगवान जो है ना बड़े भावुक हैं और सबके साथ में दिल से पेश आते हैं। अभी ये जो कथा यहाँ पर हमारी गुरुजी ने की और गिरिराज महाराज ने भी की, उसके बाद में उसके बाद एक प्रश्न आया, जो अभी हमारी यात्रा भी समाप्त हो रही है, आज लास्ट डे हमारा, तो प्रश्न में सोचा कि आपको बताना चाहिए वो प्रश्न क्या था। वो प्रश्न ये था कि एक व्यक्ति भक्त ने पूछा, जैसे हमने कथा में बताया कि हमने सुना कथा में जयपुर यात्रा में 95 में कि गोविंद जी का दर्शन लेने से हमारे हृदय जो है वो भौतिक वासनाओं से मुक्त हो जाएगा और कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। अच्छा लगा सुन के, लेकिन क्या बता सकते हैं आप ये कब होगा? When it will happen? तो गिरिराज महाराज बोलते हैं, अच्छा वो बोले कब होगा और ये कैसे होगा, मतलब इनकी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होगा ये, हाउ इट विल हैपन। तो गिरिराज महाराज ने कहा कि आप बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर गोविंद जी के जो आचार्य हैं रूप गोस्वामी, अभी देखिए आचार्य गोविंद जी के पूजक, उन्होंने अपने भक्ति रसामृत नाम के ग्रंथ में दिया है। वो क्या बोलते हैं कि अगर हम ये जो पांच तत्व हैं भक्ति के, सत्संग, नाम भजन, विग्रहों की पूजा, भागवत श्रवण और धामवास, इन पांच तत्वों में से कोई भी एक तत्व का आश्रय लेंगे और लगातार इस तत्व को पालन करेंगे नियमित रूप से, एक भी, पांचों करना चाहिए लेकिन एक भी आप करेंगे, तो एक दिन निश्चित रूप से आपके मन में कृष्ण प्रेम जागृत होगा। हरि बोल। लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन इसमें एक बाधा आ सकती है, आप बहुत प्रेम से पालन कर रहे हो, नाम कर रहे हो, धामवास कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी हो सकता है कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। कैसे? अगर आप वैष्णवों का अपराध करेंगे, उनके दिल को दुखाएंगे, तो ना केवल आपको कुछ प्राप्ति नहीं होगी लेकिन विपरीत परिणाम भी हो जाएंगे आपके। तो उन्होंने फिर एक उदाहरण दिया कि ईश्वरपुरी थे ना, ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी, उनके एक भक्त थे, ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे, माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। जब माधवेंद्रपुरी शरीर छोड़ रहे थे, लास्ट स्टेज में थे एकदम, और भगवान को बोल रहे, भगवान कब मिलूंगा आपको मैं, कब मेरा आपका मुझे दर्शन होगा, मैं आपको बहुत ही क्या कहते हैं उसको याद कर रहा हूँ, बहुत विरह का अनुभव कर रहा हूँ, आप कब मिलेंगे मुझे। तो वो रामचंद्र खान नाम का शिष्य था, रामचंद्रपुरी नाम का शिष्य था, वो गुरु जी को अपने आके बोलता है, अरे गुरु महाराज इस समय रोने का नहीं है, इस समय शांत रहने का है, आप क्यों नहीं भगवान के साथ में एक रूप होकर शांति का अनुभव करें, मुझे लगा था कि आप भगवान से मिले हुए हो, आप तो भगवान को बोल रहे हैं कि आप कहाँ हो ऐसे पूछ रहे हो, मतलब एक मूर्खता की बात किया उन्होंने। एक महान वैष्णव शरीर छोटे समय भगवान के विरह में अति उत्कट भगवान का संग करता है, और ये मूर्ख व्यक्ति सोच रहा है कि मेरे गुरु होने पर भी इनका भगवान का मुलाकात नहीं हुआ तो कैसे गुरु है ये। इस तरह से जैसे उन्होंने ऐसी बात की उनसे कि गुरु महाराज ऐसा को रोना नहीं चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, मन को शांत करना चाहिए, ये रोने का समय नहीं है, आपको मन को शांत करके निर्वाण को प्राप्त करना चाहिए, ऐसे वो गुरुजी को बता रहे हैं जब वो लास्ट स्टेज में भगवान की विरह में रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा, गेट आउट फ्रॉम हियर, मेरे नजरों से दूर चले जाओ, आप मेरे साथ होने के लायक नहीं हो। इस तरह से गुरुजी को बहुत दर्द दिया उसने, बहुत भयंकर अपराध किया। तो आगे जाकर रामचंद्रपुरी के जीवन में ऐसी घटनाएं हुई कि वो पहले भक्त तो था लेकिन भक्त होने पर भी काम वासना, ये वासना, वो वासना उसके मन में पैदा हो गई, जो पहले नहीं थे उसके लेकिन पैदा हो गई। तो गिरिराज महाराज ने उदाहरण दिया, बताया कि अगर आप भक्ति कर रहे हो और कुछ लाभ भी ले रहे हो भक्ति का, कुछ शुद्धिकरण प्राप्त कर रहे हो, लेकिन साथ साथ में अगर वैष्णव अपराध करते हो तो जो आपने छोड़ दिया है वो भी मलमूत्र को आप वापस स्वीकार करोगे। मलमूत्र क्या है? काम, क्रोध, मोह, मत्सर जो है ना, ये छोड़ देने की चीजें हैं, त्यागने की चीजें हैं, वो भी वापस स्वीकार करोगे, उसको ही चखने लगोगे दोबारा, जैसे उल्टी करोगे और उसको ही खाओगे दोबारा, ऐसे हो जाएगा। तो वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। और वैष्णव अपराध क्या है कैसे समझेंगे आप? किसी भी वैष्णव को आपको दुखाना नहीं है, उसका दिल नहीं दुखाना है, बस सिंपल चीज है। किसी भी घटना में किसी भी प्रकार से वैष्णव का हृदय आपको दुखाना नहीं है। और वैष्णव कौन है? महाप्रभु चैतन्य ने व्याख्या किया उसका, जो भगवान का नाम लेता है वो वैष्णव है। ऐसे पहले साल में उन्होंने बोला, फर्स्ट टाइम, हु इज डिवोटी, तो उन्होंने कहा कि जो कृष्ण का नाम एक बार भी लेता है वो वैष्णव है। नेक्स्ट ईयर उनको किसी भक्त ने किसी और प्रसंग में और जगह पर वही प्रश्न किया कि वैष्णव कौन है, तो उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति सतत मेरा नाम लेता है, मुझे कभी भी भूलता नहीं है, निरंतर मेरे ध्यान में मग्न रहता है, वो मेरा वैष्णव है। हायर डेफिनेशन। तीसरे साल फिर किसी भक्त ने किसी और प्रसंग में उनको दोबारा प्रश्न किया, तीसरी बार, कि वैष्णव कौन है, तो उन्होंने कहा जिसके ध्यान से सुनना। थर्ड ईयर में क्या कहा? थर्ड ईयर में बताया कि जिसके संग में बैठकर आपको भगवान नाम लेने की प्रेरणा हो जाए वो वैष्णव है। तो ये तीनों प्रकार के वैष्णव को आप मिल सकते हो ना दुनिया में, तीनों प्रकार के वैष्णव को पहचान सकते हो। और सबसे कम से कम जो भगवान का नाम एक बार भी लेता है वो भी वैष्णव है, उसका भी अपराध नहीं करना चाहिए, उसका भी दिल दुखाना नहीं चाहिए। आप बोलेंगे कि अरे मैं तो सीनियर हूं, 15 साल पहले आया हूं, मैं इसको लेके आया हूं, इसका क्या अपराध होगा, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूं उसको। नहीं, भगवान की दृष्टि में कोई सीनियर जूनियर नहीं है। कौन किस जन्म में क्या क्या कर चुका है, कहाँ कहाँ आगे पहुंच चुका है, और कैसे निमित्त बन के आप उसको लाते हो अंदर, इससे कुछ नहीं होता है। भगवान तो किसी भी भक्त को ऊंचा नीचा नहीं मानते हैं, जो भी उनका नाम लेता है वो उनको श्रेष्ठ मानते हैं, वो उनके लिए प्रिय है। कोई जैसे आपके घर में 5 बच्चे हैं समझो, तो आप बोलेंगे क्या सब जूनियर सबसे एकदम नालायक है, उसको कोई वैल्यू नहीं है, बड़ा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा होता है क्या? माँ बाप की दृष्टि से सारे बच्चों पर वह समान प्रेम करते हैं, कोई तो भेदभाव नहीं करते उनके ऊपर, वो माँ बाप का प्रेम ऐसा निरपेक्ष होता है। तो बोझा ये बच्चा जो है बुद्धू है वो फेल होता है हमेशा, और ये बच्चा जो है फर्स्ट नंबर लेके आता है, ये बच्चा जो है बहुत पैसे कमा रहा है, ये बच्चा तो निकम्मा है, ऐसे माँ बाप भेद नहीं करते, वो तो उनको प्रेम ही करते रहते हैं, चाहे वो निकम्मा हो, बुद्धू हो, फेल हो, गोल्ड मेडल लेके आता हो, सब पर एक साथ प्रेम करते हैं। वैसे ही भगवान अपने भक्त पर जो है भक्तों पर समान प्रेम करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते, इसलिए उनके दृष्टि से जो वैष्णव है उसका अपराध आप नहीं कर सकते हैं। हमारी दृष्टि से कि मैं सीनियर हूँ, मैं जूनियर हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये उनकी दृष्टि नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? जैसे कृष्ण सोचते हैं वैसे हमको सोचना है, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। जिस प्रकार की सोच कृष्ण भगवान की है दुनिया की ओर और दुनिया के लोगों की ओर, वैसे हमको भी वैसे ही सोचना चाहिए। एक भाई जो भाई के बारे में सोचता है, उससे माँ और पिताजी जो सोचता है बालक के बारे में, बहुत ऊंचा होता है, वो निरपेक्ष और श्रेष्ठ होता है। तो भाई के बारे में सोच के सामने माँ बाप की सोच जो होती है बच्चों के लिए वो श्रेष्ठ होती है, वो भेदभाव नहीं करते। एक अर्थ कृष्ण कॉन्शियसनेस का है कि कृष्ण के बारे में क्या कहते हैं उसको, जागरूक रहना, हमेशा कृष्ण के स्मरण में रहना, कृष्ण के क्या कहते हैं उसको, अवेयरनेस, अवेयरनेस को क्या बोलते हैं, जागरूक रहना, कृष्ण भावना के लिए जागरूक रहना, हमेशा कृष्ण के लिए जागरूक रहना। और एक है जैसे कृष्ण सोचते हैं वैसे सोचना, तो हमको ऐसे ही रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगला प्रश्न आया कि फिर ये भक्तों का अपराध कैसे, वो बचना कैसे उससे, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये नहीं करना है, और आपके मन में प्रामाणिक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये अपराध नहीं करना है, नंबर वन। और भगवान की सेवा में बड़े ही प्रामाणिकता से, नम्रता से, हृदयपूर्वक समर्पित रहना चाहिए, उसमें कोई अनन्य भाव रखना नहीं चाहिए कि मुझे भगवान की भक्ति करूँगा तो प्रमोशन होगी, अच्छी बीवी मिलेगी, लोन फिट जाएगा और कुछ लॉटरी लगेगी ये सब बातें भगवान की सेवा करते हुए मन में मत रखना। अन्याभिलाषिता शून्यम, सब कुछ भौतिक इच्छाओं को छोड़कर भगवान की भजन करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा।